कृष्ण। तो कल और परसों हम जगन्नाथ के आविर्भाव के बारे में हम चर्चा कर रहा था, याद कर रहा था। किसको याद है जगन्नाथ के आविर्भाव की कहानी? पता है सबको? सबको याद है? कल कहां तक मैं पाठ किया था? Why didn't you give your garland to your mother? पहना है क्यों नहीं? हाँ, ना कि ब्रह्मचारी को पहना ओके तो कल मैं कहां तक पाठ किया था? किसको याद है? और उसके बाद मैं ये भी बताया था सुभद्र जगन्नाथ बालदेव सुभद्रा कैसे ये स्वरूप वैकुंठ में भी है। वैकुंठ में भी ये भगवान का नित्य स्वरूप है। हाँ, तो वैकुंठ में कहां है ये रूप है भगवान का? द्वारका। बहुत अच्छा। और कैसे भगवान इस रूप प्रकट किए थे? याद है सबको ना? क्या हमको फिर से बताना होगा? अच्छा, मैं संक्षेप में बताऊंगा। द्वारका में कृष्ण का महिषियों ने देखते थे कि कृष्ण का मन हर समय और कहीं रहता था। जब मन और कोई रहता है तो क्या बोलता है हिंदी में उसको? बंगला में बोलता है अनमना या अन्न मनस्क। मन और कहीं है तो हिंदी में जब ऐसा होता क्या बोलता है? हिंदी में भी अनमना बोलता है। अनमना। ओके। तो देखते थे कि कृष्ण हर समय ऐसे अनमना रहता है। तो उन्होंने सोचते थे क्या कहां कृष्ण का मन कहां था, कहां रहता है? बल्कि रात को पता चलता है कृष्ण का मन कहां रहता था, क्योंकि रात को कृष्ण ने नींद में ब्रजवासियों को जैसे नंद बाबा को, यशोदा माई को, राधा रानी को बुला और अपने सखाओं को बुलाते थे, गाय को बुलाते थे, हे श्यामली हे धवली यहाँ आ जा, मत जाना वहां। राधा रानी को याद करके राधा रानी को संबोधन करके कुछ कहते थे, सुबल श्रीदाम सुदाम वसुदाम आदि सखाओं को कुछ बोलते थे। तो वैसे सपना में कृष्ण बातें करते थे। तब महिषियों को पता चलता था कि कृष्ण का मन कहां था। कृष्ण का मन कहां था? वृंदावन। दिन के वक्त कृष्ण का मन वहां रहता था और रात को कृष्ण वहां चले जाते थे नींद में। तो महिषियों ने सोचते थे कि क्यों कृष्ण हर समय वृंदावन का ही चिंतन करते हैं, वृंदावन के लिए ही, वृंदावन के बारे में ही सोचते हैं, क्यों उसका मन वहां ही पड़ा रहता है? वृंदावन में ऐसा क्या है जो द्वारका में नहीं है? द्वारका में सब कुछ है, तो फिर भी कृष्ण क्यों वृंदावन में, द्वारका में रहते हुए भी कृष्ण का मन वृंदावन में रहता है? तब रानिया ने एक दिन रोहिणी माता को पूछा, अब बताइए क्या वृंदावन में क्या है, कृष्ण बलराम क्या करता था और वहां क्या है जिसलिए कृष्ण का मन हर समय वहां ही रहता है? तब रोहिणी माता ने क्या बोला, तब रोहिणी माता क्या बोला, हाँ, जब कृष्ण बलराम नहीं रहेंगे तब मैं तुम सबको बताऊंगा। क्यों? हाँ, क्योंकि कृष्ण बलराम अगर वृंदावन के बारे में सुनेंगे तो उसका मन और भी उदासीन हो जाएगा, और भी उदासीन हो जाएगा। और उन्होंने रोहिणी माता को क्यों पूछा, रानिया ने क्यों रोहिणी माता को पूछा, क्योंकि रोहिणी माता वृंदावन में थी। जब कृष्ण बलराम वृंदावन में थे तब माँ रोहिणी भी वहां थी, बलराम की माँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कृष्ण बलराम और कहीं चले गए थे। जब कृष्ण बलराम और कहीं चले गए तो सब रानिया ने मोहिनी माता के पास जाकर बोला कि आप बताइए क्या हुआ था, वृंदावन के बारे में बताइए, वृंदावन में कृष्ण बलराम क्या करता था, वृंदावन में क्या है, कौन है, कैसी है वृंदावन। तो रोहिणी माता के खेत के सब बैठ गए और रोहिणी माता बोलने लगी वृंदावन की, कृष्ण का बहुत मधुर लीलाएं। और उस समय उस कमरे को, उस कमरा के दरवाजे पर सुभद्रा को रखा गया था ताकि वे द्वार रक्षा करेंगे और किसी को आने नहीं देंगे, हाँ, अगर कोई ऐसे आ जाए तो उसको रोक देना, नहीं तो बताना कि कोई आया है, ऐसे आप सुनाना नहीं चाहिए वृंदावन का। तो रोहिणी ने वृंदावन के लीलाएं बताने लगा और कृष्ण बलराम अचानक वहां आ गए। यद्यपि कृष्ण बलराम और कहीं चले गए थे बल्कि उन्होंने वहां वापस आ गए। और उस समय सुभद्रा को बताना था, बताना चाहिए था कि कृष्ण बलराम आ गया है, उनको चेतावनी देना चाहिए था। बल्कि ये कृष्ण बलराम का ये मधुर वृंदावन लीला सुनते सुनते सुभद्रा को भी कंठ रुक गया, कंठ क्या बोलते हैं, हाँ, कंठ अवरोध हो गया था, वो बातें नहीं कर पाई, बल्कि सुभद्रा ने दो हाथ ऐसे बढ़ाकर कृष्ण बलराम को रोक दिया ताकि कृष्ण बलराम अंदर न जा सके। तो वैसे वहां खड़े होकर कृष्ण बलराम वृंदावन के बारे में सुनने लगे, मतलब वृंदावन के बारे में, मतलब वृंदावन में कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ सखिया के साथ, माता पिता के साथ, गाय बछड़े के साथ क्या क्या करते थे उसके बारे में कृष्ण बलराम सुनने लगे। तो सुनते सुनते वृंदावन के विरह से, वृंदावन से बिछोड़ जाने के कारण उनका मन में इतना ताप हुआ, इतना कष्ट हुआ, उनके लिए उनका हृदय इतना व्याकुल हो गया कि कृष्ण बलराम एक ऐसे रूप ले लिए। जहां ये वृंदावन की कहानी सुनते हुए कष्ट नहीं बल्कि हर्ष के कारण, एक तो विरह और उसके साथ साथ आनंद, ये दोनों के कारण कृष्ण का मुख कमल एक उज्जवल मुस्कुरा से फैल गया, उनके आंखों कमल की भांति खिल गए और उनके दोनों हाथ उन्होंने आगे बढ़ा दिया उनको आलिंगन करने के लिए, भक्तों को गले लगाने के लिए। तो ये इस कारण कृष्ण बलराम का रूप ऐसे। और सुभद्रा भी कृष्ण बलराम को देखकर उसी भावना से, उसी भाव से प्रभावित होने के कारण सुभद्रा भी वैसे रूप प्राप्त हो गई। बल्कि कृष्ण बलराम का हाथ आगे बढ़ गया, क्यों? अपने प्यारे भक्तों को आलिंगन करने के लिए। बल्कि सुभद्रा का क्या हुआ? चूंकि कृष्ण बलराम को अपना हाथ बढ़ाकर रोक दिया, इस कारण उसके मन में बहुत संकोच हुआ, शर्माया। ये शर्माने के कारण उनके मन में बहुत अनुताप हुआ और उसके कारण उसके हाथ अपना शरीर में घुस गई। सुभद्रा का हाथ नहीं है, बलराम और कृष्ण का हाथ आगे बढ़ेगा। तो याद आ गए हैं कृष्ण बलराम का, जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के ये रूप कहाँ है? द्वारका में। क्यों ऐसे रूप हुआ? क्योंकि वृंदावन के लिए द्वारका के कृष्ण जब व्याकुल हो जाते हैं तब कृष्ण इस रूप को ग्रहण कर लेते हैं। इस रूप का मतलब है द्वारका के कृष्ण वृंदावन जाने के लिए व्याकुल हो गए। चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन ऐसे हुआ है कि सूर्य ग्रहण के उपलक्ष में सब लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं। ये एक चिराचरित प्रथा है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाके समंत पंचक में नहाने से बहुत पुण्य अर्जन होता है। जैसे कुंभ मेला के समय लोग यहां आते हैं, सिंहस्थ के समय आके शिप्रा में नहाते हैं, वैसे ही सूर्य ग्रहण के समय सब लोग जाते हैं कुरुक्षेत्र में समंत पंचक में नहाने के लिए। उस समय कृष्ण बलराम भी वहां गए और ब्रजवासियों में भी वहां गए, ब्रज के गोप गोपियां सब समंत पंचक में नहाने के लिए सूर्य ग्रहण के उपलक्ष पर कुरुक्षेत्र गए। सूर्य ग्रहण हो गया, दूसरे दिन सब जब वहां से निकलने का तैयारी कर रहे थे तब ब्रजवासियों को खबर मिला कि कृष्ण और बलराम भी वहां आए। 100 साल उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा, 100 साल के बाद ये खबर मिला कृष्ण बलराम वहां है, कुरुक्षेत्र में है। ये सुनते ही वो सब चले कृष्ण बलराम को देखने के लिए। उस समय कृष्ण बलराम भी वापस द्वारका में वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। सब रथ पर चढ़ गए, कृष्ण का रथ, बलराम का रथ, सुभद्रा का रथ। रथ पर चढ़कर उन्होंने जाने के लिए तैयार हो गए थे, उसी समय ब्रजवासियों ने वहां आ गए और ब्रजवासियों को देखते ही कृष्ण का मनोभाव कैसा हुआ? कृष्ण का मन में बहुत आनंद हुआ, हर्ष हुआ। इतने साल के बाद मैं हमारे प्यारे दोस्तों के साथ, सखियां के साथ मेरा मिलन हुआ है। तब भी कृष्ण का मुखमंडल, मुख कमल एक ऐसे जिसका वर्णन है हास्योज्वल, उज्जवल हंसी से, मुस्कुरा से कृष्ण का मुखमंडल उज्जवल बन गया, कमल जैसा खिल गया, ज्योतिर्मय हो गया, उनके आंखें कमल जैसे खिल गया, दो आंखें, क्योंकि वो देखने के लिए कृष्ण इतना आनंद हुआ, उस आनंद के कारण कृष्ण और बलराम और सुभद्रा ऐसे रूप ग्रहण कर लिया। मिलन तो हुआ है, मुलाकात तो हुआ है 100 साल के बाद, बल्कि उनका मन में ऐसा भावना था, विशेष तो है, विशेष रूप से राधा रानी का तब मन में ऐसा भावना हुआ, ये क्या कृष्ण है? ये तो कृष्ण नहीं है। जिस कृष्ण को मैं पहचानता हूं वो तो ये कृष्ण नहीं है। मैं जो कृष्ण का पहचानता हूं वो तो ग्वाल बाल है, बल्कि ये तो राजकुमार है। मैं जो कृष्ण को पहचानता हूं, मेरा जो कृष्ण है, उसके सर पे मैर मोर का पिच रहता है, बल्कि इस कृष्ण का सर पे मुकुट, उस कृष्ण के हाथ में बांसुरी रहता है, इस कृष्ण के हाथ में तलवार, भल्ला, ये सारे अस्त्र, उस कृष्ण के गले में वन फूल के माला रहता है, और इस कृष्ण के गले में मणिहार, उस कृष्ण पीतांबर है, हरा रंग के रेशम के कपड़ा पहनता है, बल्कि ये तो राजवेश धारण किए हैं, इसका शरीर में वर्ण, कवच, कुंडल, उस कृष्ण को हम मिलता था जमुना के किनारे वृंदावन के वन में, बल्कि ये कृष्ण तो यहां है, इसके चारों ओर देखो क्या है, सिपाही, सैनिक, राजपुरुष, यहां हाथी घोड़ा कितना सरगोल हो रहा है, कितना आवाज हो रहा है, बल्कि वृंदावन की वातावरण तो कितना शांत है, स्निग्ध है। तो राधा रानी का मन में जैसी ऐसी भावना आया, राधा यद्यपि कृष्ण को मिला 100 साल के बाद, मिलने के पश्चात बहुत तो आनंद होने का बात था, बल्कि राधा रानी के मन में ऐसे मन इतना ऐसे विमर्श हो गया। तो ये समझकर राधा रानी के जो अनुजाइयां ब्रजवासियों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो हम कृष्ण को वृंदावन ले जाएंगे, राधा रानी के साथ उसको मिलन संपादन करने। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, कृष्ण का रथ को पकड़ लिया, रथ घोड़ा सब तैयार था, तो घोड़ा समेत उस रथ को खींचने लगे वृंदावन की तरफ। ये है ये रथ यात्रा का महिमा, रथ यात्रा के इतिवृत्त है ये। क्यों है ये रथ यात्रा? रथ यात्रा का मतलब क्या है? कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ राधा रानी का मिलन हुआ, बल्कि ब्रजवासियों ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण को मिलकर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने सब कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे। आप जो ये रथ को खींच के यहां लाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप सब कुरुक्षेत्र से कृष्ण को, अर्थात जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को वृंदावन लाए हैं। और कृष्ण, बल, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा वृंदावन आकर बहुत बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने वृंदावन में 8 दिन ठहरे थे, 8 दिन के पश्चात वापस चले गए थे द्वारका। इस समय क्या हुआ, महालक्ष्मी रुक्मिणी देवी को खबर मिला कि ये वृंदावन के सारे ग्वालों ने कृष्ण को ले गया है वृंदावन, कृष्ण को चुरा कर ले गया, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया कृष्ण को। ऐसे अनुमति बिना देना किसी को ठीक नहीं है, विशेषतया ये राजकुमार को जो कृष्ण था द्वारका के राजकुमार, तो ऐसे कृष्ण को ऐसे लेके जाना ठीक नहीं हुआ। तो रुक्मिणी ने सोचा ये तो बहुत गलत किया है इन्होंने, इसको सजा देने को सजा देना चाहिए, तो सजा देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो ये सोचकर रुक्मिणी ने अपना द्वारका से सारे सैनिकों को लेकर पहुंच गए वृंदावन। वहां जाके वृंदावन अवरोध कर दिया, घेर लिया, घेर कर सारे ब्रजवासियों को जो कृष्ण को अपहरण किया था सबको बंदी कर लिया, सबको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के पश्चात, गिरफ्तार हुआ बल्कि अब तो विचार होना चाहिए, तो विचार कौन करने वाली थी, रुक्मिणी स्वयं विचार करेंगे। तो विचार करते समय विचारक के समक्ष दोनों पक्ष का वकील रहता है, तो द्वारका पक्ष का वकील था नारद मुनि, और वृंदावन पक्ष का वकील बना ललिता देवी। तो सवाल आ रहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं, बल्कि बताया गया कि हम अपहरण नहीं किया कृष्ण को, हम किडनैप नहीं किया, कृष्ण खुद आना चाहा, उसलिए हम उसको लाए हैं। अगर कृष्ण अगर नहीं चाहते तो हमको अगर बोलते कि मैं नहीं जाना चाहता हूं तो हम कृष्ण को वापस कर देते थे। और दूसरी बात यह है, जैसे आप सोचते हैं कि कृष्ण आपका है, वैसे हम हमारा भी अधिकार है कृष्ण के ऊपर कि वो हमारा है। कृष्ण पहले ब्रज में था, उसका बचपन कैशर ये वृंदावन में गुजरा है, बड़े होने के बाद हो गया है, बल्कि असल समय जिंदगी का जो सबसे बढ़िया समय है उस समय कृष्ण वृंदावन में था, कृष्ण हमारे साथ था, तो ये कृष्ण हमारा है। उसको अगर अपना चीज कोई अगर अपने घर लाते हैं तो उसको क्या चोरी कहा जाता है, ये तो हमारा अपना है। तो ऐसे बहुत जबरदस्त जबरदस्त रीजंस प्रमाण देने लगी। तो बाद में एक सवाल ऐसे आया कि द्वारका में तो सब कुछ है, द्वारका में सब कुछ है, क्योंकि द्वारका वैकुंठ है, केवल वैकुंठ नहीं, वैकुंठ के सबसे ऊपर की जो जगह है वो है द्वारका। तो द्वारका में सब कुछ रहते हुए भी कृष्ण का मन क्यों वृंदावन में रहता है, तो ये प्रश्न आ गए फिर से। तब ललिता ने क्या बताया, देखो ये वृंदावन का हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब जिस वृक्ष के पास हम कुछ जो भी कुछ चाहते हैं हमको मिल जाता है, और वृंदावन का जो जमीन है ये है चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष। और वृंदावन का जो गाय है वृंदावन वन है, वृंदावन के ब्रजवासियों ने ग्वाल वाल हैं, बल्कि ये जो गाय को जो पालते हैं उन्होंने, तो कौन सी गाय है? ये गाय जो वृंदावन का है वो सब सुरभि गाय है, सुरभिर अभिपालयंतम। अर्थात ये सुरभि गाय के पास हम जो कुछ मांगते हैं वही हम प्राप्त हो सकते। मतलब वृंदावन का वृक्ष है कल्प वृक्ष, वन है तो वन में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जंगल में वन में, तो ये सारे वृक्ष हैं कल्प वृक्ष। यहाँ का भूमि है चिंतामणि और यहाँ का गाय सब है सुरभि। अर्थात वृंदावन में ब्रजवासियों ने अगर कुछ चाहते थे तो उनको सब कुछ मिल सकता था। द्वारका का वैभव उनके लिए मिलना कोई कठिन नहीं था, बहुत आसानी से उन्होंने द्वारका का वैभव प्राप्त हो सकते थे, बल्कि ब्रजवासियों ने केवल कृष्ण को ही चाहते, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहते। इसलिए वृंदावन है वन, ब्रजवासियों ने सब है ग्वाल बाल। लगता है कि यहां ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है, बल्कि असल में सारे वैभवों के से परे जो स्थान है, जहां वैभव तुच्छ हो जाता है, ऐश्वर्य तुच्छ हो जाता है, संपदा तुच्छ हो जाता है, वो स्थान है वृंदावन। क्यों? क्यों यहां सब केवल भगवान को ही चाहते हैं और भगवान के बिना, और उन्होंने उनको कुछ भी चाहना नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा शून्यम, उनको और कोई अभिलाषा नहीं, उनका केवल एक ही मात्र अभिलाषा है कृष्ण को आनंद प्रदान करना, कृष्ण को सेवा करना, कृष्ण जो चाहते हैं उसको ही प्राप्त होना। तो ऐसे प्रतिष्ठा हो गया कि वृंदावन के स्थान द्वारका से भी परे है। तब रुक्मिणी देवी ने बहुत प्रसन्न हो गए, उनका मन में बहुत शर्मिंदा हो गए, उन्होंने बोलने लगे मेरा गलती हो गया, माफ कर देना। महालक्ष्मी ऐसे ब्रजगोपियों के समक्ष अपने आप को विनम्र भाव से उनके शरण लिए थे। तब उन्होंने बोला रुक्मिणी देवी ने कि मैं कृष्ण का वृंदा ब्रज रास का बारे में मैं बहुत सुना था, ब्रज में वृंदावन में कृष्ण जो रास नृत्य नाचते हैं गोपिया के साथ, इसके बारे में मैं बहुत सुना, तो ये नृत्य मैं देखना चाहता हूं। तब रास नृत्य का आयोजन हुआ और कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ रास नृत्य मनाने लगे और उसके पश्चात 8 दिन वैसे वृंदावन में रहने के पश्चात रुक्मिणी देवी कृष्ण को लेकर द्वारका में वापस चले गए। ये है इस रथ यात्रा का अनुष्ठान। ये रथ यात्रा क्यों इतना आनंददायक होता है? क्योंकि इस रथ यात्रा से जगन्नाथ का आनंद प्राप्ति होता है। भगवान हर्षित होते हैं और जब भगवान को आनंद होता है तो सारा दुनिया आनंद से फैल जाता है, तो सारा दुनिया में आनंद का संचार करने का एक बहुत सुंदर तरीका है ये रथ यात्रा का अनुष्ठान। इसका प्रचलन हम पिछले साल से किया और हर साल, जैसे इस साल में हम मना रहे हैं, हर साल ऐसे हम मनाते रहेंगे। पिछले साल हम बम्बई से रथ मंगा के ये रथ यात्रा का अनुष्ठान किया था। इस बार हम यहाँ रथ बना लिया है जगन्नाथ, और अगले साल हम क्या करेंगे, इस साल तो केवल एक रथ में हम तीनों को बैठाया था, बल्कि अगले साल हम तीन रथ, तीनों के लिए तीन रथ बनाएंगे। बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ का रथ। एक भावना, एक चिंता मेरा मन में है कि यहाँ के जो रास्ता है, जिस रास्ता से हम आए थे जगन्नाथ को लेकर, रथ लेकर, वहाँ इलेक्ट्रिक केबल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो तीन रथ बनेगा, और भी ये रथ जो है, ये रथ काफी छोटा हो गया है, तो और दो रथ जो बनेगा और बहुत बड़ा रथ बनेगा। इसका हाइट है 37 फीट, और अगले साल जो और दो रथ बनेगा उसका हाइट होगा 45 फीट। इस रथ से और 8 फीट ज्यादा ऊंचा होगा वो रथ। जगन्नाथ पुरी में जो रथ बनता है वो 45 फीट होता है, तो उसके बराबर हम भी यहाँ का रथ बनाएंगे। तो उस रथ के लिए रास्ता तो चौड़ा होना चाहिए, तो ये एक मुश्किल है हमारे लिए। तो हम देखेंगे कि और कोई दूसरे रास्ता से हम अगर ये रथ ले सकते हैं, जो जिस रास्ता से रथ लाना आसान होगा, तो ऐसा हम करना चाहते हैं अगले साल। और भी ज़्यादा धूमधाम से हम जगन्नाथ का रथ मनाएंगे, और आप सब बहुत मदद दिए थे, इसलिए हम सब बहुत आभारी हैं आप सबको। यहाँ के सरकार भी बहुत सहयोग दिए थे, कलेक्टर शेखर शुक्ला जी ने, गंगा नारायण जब उनको परमिशन के लिए उनके पास गया, तो शेखर शुक्ला जी उनका अपने सारे असिस्टेंट को, असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी, उसको डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मैजिस्ट्रेट को सब बुला के उन्होंने बताया कि इनके ये रथ यात्रा के लिए जिसका भी ज़रूरत हो सारे को पूरा करना, जो कुछ उनका ज़रूरत होगा उनको आयोजन करना। एक ये था कि इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक केबल्स हमारे रथ के साथ साथ चलने लगा। जहाँ भी ये था, ऊंचा केबल था, जो केबल नीचा था हाई वोल्टेज का, उसको काट दिया। उस समय उस सारे इलाका का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गया था रथ यात्रा के कारण। और एक बहुत सुंदर बात ये है कि उस समय खबर मिला था, रथ यात्रा जब शुरू होने वाला था तब खबर मिला था कि इंदौर में दंगा हो रहा है, इसलिए SSP ने बताया कि रथ का जो मार्ग था जाने का, उसको बदलने का, क्योंकि हमारे मार्ग में कोई मुसलमानों का जगह से आना था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ से मत जाना, क्योंकि कोई मुश्किल हो सकता है। और बाद में हम सुना कि शहर में कुछ दंगा वैसा हुआ भी था, और एक रथ यात्रा जो निकला था उसमें कुछ तकलीफ आया था, बल्कि हमारा रथ यात्रा में कोई मुश्किल नहीं हुआ, यद्यपि हम मुसलमानों के इलाके होकर आया, बल्कि कोई भी कुछ नहीं बोला। परंतु हमने देखा कि उन्होंने सब हाँ रास्ता के सामने खड़े होकर देख रहे थे रथ यात्रा बहुत खुशी के साथ आनंद के साथ। और इस सिलसिले में मैं तो ये कहना चाहता हूं कि धर्म जो है असल धर्म सबके बीच एक प्रेम और प्रीति का संपर्क स्थापन करता है। धर्म का उद्देश्य है सबको सही ज्ञान प्रदान करके उनको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने को सहयोग देना। धर्म का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है वो समझाना और भगवान के पास वापस जाने का राह दिखाना। चाहे उनको हम श्री कृष्ण कहे या अल्लाह कहे या गॉड कहे या ईसा मसीह कहे या यहोवा कहे, असल में वो एक है। परम पुरुष जो है, परम पुरुष परम ईश्वर, परम ईश्वर एक है या एक से अधिक है, वो भी बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर है। मतलब अल्लाह का मतलब क्या है, परमेश्वर। गॉड का मतलब क्या है, द सुप्रीम, द सुप्रीम फादर, सबके परम पिता। तो वैसे सभी जब मान रहे हैं कि ये परम ईश्वर है, परम है, परम पुरुष है, तो वो तो एक ही है। तो उनको हम एक भाषा के कारण भिन्न भिन्न नाम से पुकार सकते हैं, बल्कि व्यक्ति तो एक है, तो उसको लेकर हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। हमको उनको बीच में बैठा के उनके कारण हम सबको एक होना चाहिए, हमारे बीच एक समन्वय स्थापन होना चाहिए, हमारे बीच ऐक्य स्थापन होना चाहिए, एकता होना चाहिए। बल्कि क्या हो रहा है, क्योंकि धर्म के बारे में किसी ने कुछ नहीं सिखा रहे हैं, धर्म असल धर्म जो है उसकी ज्ञान परम दिव्य ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान कोई समझा नहीं रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसी जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज हो रहा है। अनडिजायरेबल का हिंदी क्या है, अवांछनीय कार्यकलाप हो रहा है। तो दूसरे लोग समझे या ना समझे, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, हमको समझना चाहिए, है ना। अगर दूसरे ने नहीं समझ रहे हैं तो ये वो उसका विचार है, उसका देखना है। धर्म हमको हमारा दिल को उदार बनाएंगे, संकीर्ण नहीं बनाएंगे। धर्म के कारण हम सबको गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं, सही धर्म। बल्कि ये जो विभेद सृष्टि हो रहा है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इस अधर्म को नाश करना चाहिए, अधर्म को नाश करके धर्म, सही धर्म को स्थापना करना चाहिए। और उस सही धर्म का नाम ही है सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या है, सनातन का मतलब है नित्य। और धर्म का मतलब क्या है, वस्तु के साथ जो गुण युक्त रहता है उसे धर्म कहा जाता है। जैसा पानी का धर्म होता है ना, पानी का धर्म क्या है, तरलता। आग का धर्म क्या है, जलाना, ताप, ज्योति, यह आग का धर्म है। ऐसे हर वस्तु का धर्म है, वैसे ही आत्मा का जो गुण है वो है आत्मा का धर्म। क्योंकि आत्मा नित्य है, सनातन है, इसलिए आत्मा का धर्म को भी सनातन धर्म कहा जाता है या नित्य धर्म। उस धर्म के विचार में हम न तो हिंदू, न तो मुसलमान, न तो यहूदी, न तो क्रिश्चियन। उस विचार में हम सब क्या हैं? उस धर्म के विचार में हम सब भगवान के नित्य दास हैं, भगवान का नित्य सेवक है। भगवान कौन है? भगवान कौन है? चाहे आप उनको जिस नाम में भी बुलाए, उसमें कोई हर्जा नहीं। जब मैं मुसलमानों की वहां से रथ लेके आ रहा था, तो मैं सोचा, कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद के पास से उन्होंने कीर्तन करना, कोई कीर्तन करना नहीं देते, मुसलमानों ने विरोध करते हैं कि यहां ऐसा नहीं करना चाहिए, कीर्तन मतलब भगवान का महिमा कीर्तन नहीं करना। तो मैं आते समय मैं सोच रहा था, तो अगर वो बोलेगा तुम आप लोग कीर्तन नहीं कर पाएंगे, मतलब हरे कृष्ण कीर्तन नहीं कर पाएंगे, तो मैं सोचा तो हम बोलेंगे चलो अल्लाह अकबर करते करते हम लोग चलेंगे। हर्जा क्या है? अल्लाह हो अकबर मतलब परमेश्वर ही है सबसे महान। तो सबसे महान कौन है? सबसे महान के आप और हम हैं, सबसे महान केवल भगवान है। ये भाषा के कारण हम विभेद देख रहे हैं, बल्कि उसकी भाव जब हम लेते हैं तब कोई मुश्किल नहीं रहता है। तो वैसे हमको केवल उज्जैन में ही नहीं, सारा दुनिया भर इस सही भावना को प्रचार करना चाहिए, तभी केवल इस दुनिया का कल्याण होगा। नहीं तो आज क्या हो रहा है, धर्म के नाते लड़ाई हो रहा है, धर्म के कारण एक दूसरे को हत्या कर रहा है। वो क्या क्यों कर रहे हैं कि मेरा धर्म ही सही धर्म है, आपका धर्म गलत है। बल्कि असल में क्या देखना चाहिए, हमारा सबके धर्म ही एक ही है, हम सब भगवान की ओर, चाहे किसी भी नाम में उसको हम बोलते हैं, उस परम ईश्वर की ही पूजन हम करना चाहते हैं। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, चलिए हम सब मिल के करते हैं, तब सारा दुनिया में शांति फैल जाए। हरे कृष्णा, आप सब बोलिए हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे राम,
राम राम,
हरे हरे।